तो आप जानना चाहते हैं सम्मेलन में जो सांसारिक विचार आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए। ये समस्या सबके साथ ही कॉमन है। जो भी सम्मेलन करता है तो काफी लंबे समय तक इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई एक ही नहीं है जो बताई जा सके कि आप ऐसा कर लो तो ये कंट्रोल हो जाएगा। महाराज जी ने एक निर्णय दिया है इसके बारे में। सही अभ्यास या सही सिमरन विवेक और वैराग्य सहित ही होता है। जब तक आपके आपके अंदर विवेक परिपक्व नहीं है और उस विवेक के कारण आपका संसार के प्रति अट्रैक्शन कमजोर नहीं पड़ा है तब तक आपकी ये समस्या स्ट्रांग बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका विवेक और वैराग्य बढ़ेगा ये समस्या भी आपकी हल्की होती चली जाएगी। तो प्रश्न उठता है कि विवेक कैसे स्ट्रांग करें, क्या है ये? तो महाराज जी ने एक वचन लिखा है, वासना छेदन विवेक। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं इस शरीर की रचना का यदि विचार किया जाए या देह का विचार किया जाए तो विवेक हासिल हो जाता है। तो देह की रचना क्या है? हम जानते हैं कि बुद्धि, मन, इंद्रियां और अहंकार, मैं भाव जिसे कहते हैं, कहते हैं ये जो चक्र है ये एक यंत्र बना हुआ है। विचार हमने क्या करना है? देखो सत्पुरुष विचार दे रहा है, विचार क्या करना है? ये एक यंत्र बना हुआ है। अब शब्द का प्रयोग देखे महाराज जी क्या कर रहे हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां और जो अहंकार है ये एक यंत्र बना हुआ है। अहंकार का मतलब यहां पर है इंडिविजुअलिटी से, मैं एक अलग हूं और बाकी लोग सब अलग हैं, तो मैं भाव जो है तो बिना भाव के तो ये यंत्र बनेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं सहित जो है ये बुद्धि, मन, इंद्रियां जो है ये एक यंत्र बना हुआ है। क्योंकि आगे वो लिखते हैं कि जीवन शक्ति इसका संचालन कर रही है, इस यंत्र का जीवन शक्ति संचालन कर रही है। वो कहते हैं इस बात को यदि समझ लिया जाए, इसका विवेचन कर लिया जाए तो आपके अंदर विवेक आ जाएगा। लेकिन ये शब्द पढ़ लेने से आप देखेंगे कि आप उसको एक वर्ड्स करके पढ़ ले रहे हैं, आपकी बात समझ में आने रही है। इस सब का कॉम्बिनेशन जो है, जो यंत्र है ये, इसका संचालन ईश्वर शक्ति के द्वारा हो रहा है। आप यदि बाहर की बात करें, देह के बाहर की बात करें तो प्रकृति में बहुत चीजें नजर आ रही हैं, तो सूर्य नजर आ रहा है, चंद्रमा नजर आ रहा है, तारे नजर आ रहे हैं, वायु नजर आ रही है, पानी नजर आ रहा है, पृथ्वी नजर आ रही है, आ रही नहीं आ रही, और कितना एग्जैक्ट क्रम से इसे घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य में मनुष्य का दूर दूर तक कोई रोल भी नहीं। तो अभी तो महाराज जी देह की बात कर रहे हैं कि देह का विवेक हासिल करने से या देह का ये इस यंत्र का विश्लेषण करने से तेरे अंदर विवेक आ जाएगा, लेकिन केवल देह से काम नहीं बनता। मैं तो संसार में ही फंसा हुआ हूं ना, तो संसार का भी विचार करके देखो, ये विचार करना बड़ा आसान हो जाता है। एक पृथ्वी का घूमना कोई साधारण क्रिया है क्या? इसके अंदर चुंबक शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स होना, ये कोई साधारण चीज है क्या जिसके बिना आपका देह संसार में टिक नहीं सकता? रहेगा देह आपका? सूर्य के बिना क्या जीवन पृथ्वी पर रहेगा? सोचिए, तो पृथ्वी का जीवन का मतलब पृथ्वी के सारे जीव जो रह रहे हैं पृथ्वी पर, वो पृथ्वी ही है, वो सबका जीवन सूर्य पर निर्भर कर रहा है। कहते हैं कि ये चंद्रमा है, इसकी जो रोशनी है इसमें रस पाता है, वनस्पतियों में रस पाता है। चंद्रमा ना हो तो ये रसहीन हो जाएंगे, सूर्य ना हो तो पैदा ही नहीं होगा। तो सारे ज्योतिषी भी कहते हैं कि स्टार्स का असर हम पर पड़ता है, देखो ना, इसका मतलब पूरी प्रकृति एक है और हर चीज का असर हम पर पड़ रहा है। लेकिन इस बात को समझने में आपको डाउट नहीं होता, आप बड़ी आसानी से समझ लेते हो, जितने भी ये ब्रह्मांड है इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है। ये बात समझना बड़ा ही आसान है, किसी बच्चे को भी समझाया जा सकता है, लेकिन हमने कभी इस तरह से इसके विचार ही नहीं किया। एक साइंटिस्ट भी इस तरह से विचार नहीं करता, एक वैज्ञानिक भी इस तरह से विचार नहीं करता। तो विचार करने की बात यह है कि सारा का सारा ये ब्रह्मांड ठीक गति से चल रहा है, एक प्लान के तहत लगता है ऐसा देखने में कि ये सब कार्य कर रहा है, ये हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन ला रहा है। इसमें मनुष्य का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, 0.001% है। इस बात को हमारी बुद्धि आसानी से स्वीकार कर सकती है यदि विचार करें तो इस प्रकृति का संचालन ईश्वर कर रहा है, कोई सत्ता तो होगी जो इसको ठीक गति प्रदान कर रही है, किसी के कमांड में ये सारा कुछ चल रहा होगा प्रकृति चक्र। तो ऋषि कहते हैं कि वो ईश्वर शक्ति ही इसका संचालन कर रही है। इस प्रकृति में अहंकार नहीं, मेरे अंदर अहंकार है, एक एडिशनल खराबी है मेरे अंदर, मेरे अंदर अहंकार है कि मैं संचालन कर रहा हूं, इस देह का संचालन मैं कर रहा हूं, ये मेरे अंदर अहंकार है। और संसार में बहुत से काम कर रहा हूं, संसार को बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, मेरे लिए अहंकार। इसीलिए आपके लिए एक और नाम दिया गया इस अहंकार के लिए, कर्तापन। कर्तापन से वासना, कर्तापन से तेरे में वासना पैदा होती है, वासना से संसार, और वासना से ही संसार उदय होता है। यही अज्ञान है जीव को, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख का, ये जीव का अज्ञान है, मेरा यानी अज्ञान है, और इसी कारण ये शरीर मुझको मिलता है, शरीर मेरा मरता है, फिर मिलता है, फिर मरता है, इसको आवागमन कहते हैं। और ये आवागमन क्या है? दुख साथ, ये जीव के लिए दुख है। तो कर्तापन से वासना जो डिजायर में पैदा हो रही है, वासना पैदा हो रही है, वो कर्तापन के कारण है कि मैं करता हूं। लेकिन किसी ऋषि से पूछो, महाजी पर हमारा विश्वास है, महाजी से पूछो, महाजी ने कहीं कहा हो कि मैं करता हूं तो बताओ। मैं महाराज जी ने कहीं कहा हो मैं करता हूं तो बताइए। एक व्यावहारिक बातचीत में वो आ जाए वो अलग बात होती है, हमसे वो बात कर रहे हैं तो हमारे लेवल के रह के तो बात करेंगे, एक मनुष्य की तरह ही तो बात करेंगे, तब तो हमारी हमें उनकी बात समझ में आएगी। यदि ज्ञानी बन के बात करेंगे हमारी कहाँ समझ में आएगी, तो वो दूसरी एक अलग चीज है। लेकिन समता प्रकाश है, समता विलास है, कहीं महाराज जी ने मैं करता कहा हो तो बताइए। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ये तो कहा। और कहते हैं प्रेमी सदैव याद रखो यही सत्य है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। इसका मतलब चाहे ये मनुष्य है, मनुष्य देह है, चाहे ये सूर्य की देह है, चाहे चंद्रमा की देह है, चाहे पृथ्वी रूप देह है, जितना भी ये आकार मंडल है का संचालन जीवन शक्ति कर रही है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। और जो कुछ भी मैं करके समझ रहा हूं, बुद्धि मन इंद्रियां अहंकार और इस स्थूल देह आपकी, जितना मैं करके समझ रहा हूं मैं, तो कहते हैं ये एक यंत्र मात्र है, इस यंत्र का संचालन वो जीवन शक्ति कर रही है। महाजी कहते हैं ये बात यदि आप समझ लो, इस पर यदि गहरा मनन कर लो, तो आपके अंदर विवेक आ जाएगा। लेकिन आप विचार करके देखो, आपने कितना सत्संग सुना होगा, कितनी महाजी ये बातें पढ़ी भी होंगी, क्या मैंने इस एक बचत पे इस तरह से कभी विचार करके देखा? संत विलास में लिखा हुआ है, इस तरह से कहीं मैंने सत्संग में भी किसी का विचार, किसी को विचार करते देखा? करना चाहिए, जो संत विलास आपको विचार करने के तो कह रही है ना, सत्संग का मतलब ये होता है कि हम जो बात पढ़ रहे हैं वो हमारे बात से लिखी हुई है, और सिमरन में मन लगे इसी बात से लिखी हुई है। वासना छेदन विवेक जब कर क्यों है ये, सिमरन में आपका मन लगे इसी बात से तो है ना। तो ये विवेक आपको में यदि नहीं आता तो आप कर्ता बने रहोगे। यदि आपके करने से हो रहा है तो जो परिवार का बन रहा है बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भाव ये आएगा, यही आएगा कि मैंने कहाँ गलती करी, ये चीजें क्यों बिगड़ गई, और मैं क्या करूं ये सब चीजें ठीक हो जाए। ये तो सच हो गया, अपने बारे में भी, घर के बारे में भी, दफ्तर के बारे में भी, सोसाइटी के बारे में भी सोचो गया। तो लगातार चीजें आपकी बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, जो ठीक ठाक थी एक दिन, मान लिया मेरा शरीर ही ठीक ठाक था एक दिन, बड़ा स्वस्थ था, अब मुझे कोई रोग परेशान कर रहा है, और मेरी देह जिससे भी कनेक्टेड है, जो लोगों के साथ है, वहां भी यही हाल है। तो जो चीज कल ठीक थी वो आज बिगड़ रही है, जो आज बिगड़ी हुई है कल को ठीक होने की संभावना है, तो महा जी कह रहे हैं ये निरंतर परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है, तेरे जीवन में हो रहा है, ये निरंतर नॉन स्टॉप परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको द्वंद कहते हैं। एक चीज बनती है दूसरी बिगड़ती है, जैसे दिन से रात का उदय होता है, रात से दिन का उदय होता है। केवल दिन कोई चीज होती है क्या? महाराज कह रहे हैं सुख से दुख उत्पन्न होता है, दुख से सुख उत्पन्न होता है। सिंपल तरीके से समझना हो तो मुझे भूख ना लगी हो, खाने का टाइम हो जाए, खाना मेरे आगे रख दिया जाए, उस खाने में कितना कम स्वाद आएगा आपको, आप जानते हो। भूख यदि तेज लगी हो और वही खाना आपके सामने आ जाए तो कितना स्वाद आएगा उसमें, विचार करके देखो। पदार्थ वही है, उसको भोगने वाला भी वही है, लेकिन उसके सुख में अंतर क्यों आ गया? क्योंकि भूख का दुख बढ़ा जब उस भूख ने ये सुख पैदा कर दिया। तो महाजी की वाणी कह रही है, संतविलास कह रही है कि सुख से ही दुख का जन्म होता है, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है। इसका मतलब हो गया कि यदि मैंने जिंदगी की प्लानिंग ज्यादा सुख भोगने की है, या जब अच्छे दिन मेरे रहे ज्यादा सुख मैंने भोगा है, तो याद रख तो ये दुख के रूप में तुझे भविष्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर ने तुझे माया दे रखी है, यदि संपत्ति दे रखी है, अच्छे दिन दे रखे हैं, तुम्हें होश में रहना चाहिए था। दो हाथ उलीचिए घर में बाढ़ है दाव, क्यों कह रहा है संत? वो इस द्वंद्व चक्र को जानता है, इसलिए कह रहा है मैं बेहोश हूं। वो इस द्वंद्व चक्र को जानता है, इसने आज भोगा यदि अपना समझ के, तो कल ये कितना दुखी होगा इसको इसको पता नहीं है। ये प्रकृति के सिद्धांत को नहीं समझ रहा। इसीलिए यदि आपके पास भाग्यवश प्रारब्धवश ज्यादा आ भी जाए तो भोगने की परमिशन कहाँ है, मर्यादा में ही है, बाकी उन लोगों की सेवा में लगाने के लिए, वो भी निष्काम भाव से, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, जो अभावग्रस्त है, जिनको उसकी जरूरत है, तो जरूरतमंद तक पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है। तो इसीलिए जब तक मैं इन सिद्धांतों को समझता नहीं, तब तक मेरे अंदर ईश्वर का निश्चय परिपक्व नहीं होता। इस सारे चक्र को, इस द्वंद्व चक्र को चलाने वाली सत्ता, उसका नाम ईश्वर है। जिसको महाराज जी ईश्वर शक्ति करके कह रहे हैं। इस देह का संचालन, इस यंत्र का संचालन जिसमें बुद्धि मन इंद्रियां अहम भाव सब शामिल है, इसका संचालन ईश्वरीय सत्ता कर रही है। यदि आप इसको जैसा लिखा है वैसा ही समझकर मान लें, एक्सेप्ट कर लें, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं इसका संचालन ईश्वर ही कर रहा है, और ये बाहर की प्रकृति ये तो मैं बड़ी आसानी से स्वीकार कर रहा हूं, इसका संचालन तो ईश्वर शक्ति कर ही रही, ये तो मनुष्य का कोई रोल नहीं है। अब विचार करिए तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? इस विवेक के प्रकाश में यदि आप इसका अर्थ देखें, जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही, तिल मात्र भी कोई कुछ नहीं कर सकता इस द्वंद्व रूपी प्रकृति चक्र में, ये वाणी साफ है। वाणी कहां से आई है? ये बुद्धि से निकली है या ईश्वर से आई है? ईश्वर का हुक्म है, ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए भेजा गया यह ज्ञान है। ये तो महाजी की उपस्थिति नहीं है, ये ईश्वर द्वारा हमारे लिए भेजा हुआ ज्ञान है। मैं इस ज्ञान को क्या ऐसे समझ रहा हूं जैसा वो कह रहा है? शायद ही कोई प्रेमी होगा जो इसको इसी प्रकार से समझता हो और एक्सेप्ट करता हो, शायद ही कोई होगा। इसीलिए जब हमारे अंदर गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं है, उसको इतने ध्यान से पढ़कर उसके बारे में चिंतन करने की हमने कोशिश ही नहीं की, तो हमारे अंदर विवेक कहां से आएगा? विवेक का मतलब है सही समझ। हमारे अंदर अपने बारे में, संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में सही समझ कहां से आएगी? जब सही समझ नहीं है तो जो बोझ मेरे ऊपर नहीं है वो उसको बोझ को मैं धारण कर लूंगा अपने से। जैसे मुझको पता है, किसी ज्योतिष से बताओगे तो वही बता देगा, इतनी बात तो वो भी बता देगा कि सबके जीवन का एक वक्त होता है जब वो मरता है। हर व्यक्ति एक लिमिटेड जीवन लेके आता है और सबका अलग अलग होता है, लेकिन पूरी जिंदगी हम उस मौत से भय खाते रहते हैं। अपने परिवार के लोगों के बारे में भय खाते रहते हैं, अरे कहीं मर तो नहीं जाएगा, अरे कहीं मर तो नहीं जाएगा। एक बात का निश्चय जो हम मानते भी हैं, ये फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि सबने ही मरना है और सबकी अलग अलग आयु है और सबके मरने के अलग अलग कारण बनेंगे और उन कारणों को मैं बदल नहीं सकता। सब कुछ होने के बाद भी मैं कितना बेचैन रहता हूं, कितना बेचैन रहता हूं, कितने नुस्खे अपनाता हूं किस तरह मौत टाल दूंगी, ये तो अपनाती हूं ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरा कहीं भी कोई भी निश्चय ठीक नहीं, सारे निश्चय मेरे हिल रहे हैं, अपनी करनी पे विश्वास है बस। जब हर बारे में तुझे अपनी करनी पर विश्वास है तो सिमरन करेगा तो उस करनी की याद नहीं आएगी तुझे, उसकी प्लानिंग की याद नहीं आएगी, उस प्लानिंग के अनुसार जो तुमने कर्म किए हैं उसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, कर्म करने के बाद भी तो परिवर्तन, रिजल्ट में परिवर्तन हो रहा है, तो वो अच्छे रिजल्ट बुरे दिनों में नहीं बदलेंगे और बुरे अच्छे दिनों में नहीं बदलेंगे, हर चीज बदलेगी। तो अपनी देह को देख ले, निरंतर परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है? तब भी तुझे होश नहीं है कि निरंतर परिवर्तन हो रहा है, मैं अपने आप को वही समझ रहा हूं, कितने परिवर्तन हुए इस देह के अंदर, मैं अपने आप को वैसे का वैसे ही समझ रहा हूं, अभी तक मैं वही हूं। कोई कह रहे है अब तुम वो नहीं हो तो कभी एक्सेप्ट करोगे आप? नहीं भाई, मैं वही हूं। आप यही कहोगे मैं वही हूं, कभी भूल के भी नहीं कहोगे मैं वो नहीं हूं। फिर आपको ध्यान आएगा, उस समय ध्यान आएगा, हाँ ये देह बूढ़ी हो गई है, ये देह बूढ़ी हो गई है इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, मैं वही हूं, देह बूढ़ी हो गई है। बोल तुम ठीक रहे हो लेकिन समझ ठीक नहीं रहे, बोल तुम ठीक रहे हो लेकिन समझ ठीक नहीं रहे हो। सत्पुरुष तुझे यही याद दिला रहे हैं, देह तेरा स्वरूप नहीं है, ये बदलती रहती है, यदि ये तेरा स्वरूप होता तो वही रहता ये, लेकिन तू एक्सेप्ट कर रहा है तेरा स्वरूप बदल रहा है, तो ये देह जो तू अपना स्वरूप समझ रहा है ये तेरा भ्रम है, तू वही है ये बात ठीक है, लेकिन देह तेरी बूढ़ी हो रही है इसको तू एक्सेप्ट कर रहा है, मैं वही हूं लेकिन देह बूढ़ी हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ये सत्य है तेरे बारे में, लेकिन तूने इस पर विचार नहीं किया कभी। ये दो चीजें एक नहीं है। जो देह बूढ़ी हो रही है वो मरेगी भी तो, वो गिरेगी भी तो, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। लेकिन मेरे अंदर वासना है, मेरे अंदर इच्छाएं हैं, मैंने संस्कार बनाए हैं, मैंने स्वभाव बनाया है, ये है मेरे साथ, और ये सब जो सूक्ष्म शरीर है, ये तो स्थूल शरीर दिखाई पड़ रहा है। मन बूढ़ा हो गया कोई कहता है कभी? कभी किसी को कहते सुना मन बूढ़ा हो गया, देह बूढ़ी हो गई? लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं मन को, इसको वो सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता, परिवर्तन उसमें भी होता है, परिवर्तन उसमें भी होता है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन होता है, मेरी इच्छाओं में परिवर्तन होता है, नहीं होता है फिर परिवर्तन वहां भी है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इसीलिए देह जब की मृत्यु होती है तो मैं और मेरा मन ये बच जाता है। और जो मेरी इंद्रियां हैं वो मन में ही, मन से ही उदय होती है, मन में ही वो लीन हो जाती है। तो अपनी संपत्ति लेकर इस देह का मैं क्या करता हूं तो जीव जाएगा कहां, बताओ, विचार करो, जीव जाएगा कहां? जब सारा संचालन उस ईश्वर शक्ति से हो रहा है तो ईश्वर शक्ति उस समय छोड़ देगी कैसे? तो ये जीव अपने मन सहित ईश्वर शक्ति के ही अधीन रहता है। और जैसा इसने ये मन तैयार किया था, मन में परिवर्तन लाया ना, हर जन्म में आप मन में परिवर्तन लाते हैं ना, तो जैसा तूने मन के अंदर परिवर्तन लाया है तेरे सूक्ष्म शरीर में, जैसा तेरे कर्मों के द्वारा, तेरी सोच के द्वारा परिवर्तन हुआ है, मरते वक्त जो स्थिति है तेरी, वही स्थिति तेरी नई देह तैयार करेगी। तो तू तैयार कर सकता है क्या? तू ना मार सकता है ना तैयार कर सकता है। तो ईश्वर शक्ति ही तैयार करेगी, खाली तैयार नहीं करेगी, उसका संचालन भी करेगी फिर इसी अनुसार। इसीलिए देह के जन्म लेते ही प्रभु इस देह को एक प्रारंभ के साथ बांध देते हैं। जैसे कि एक सरल सा उदाहरण कभी आपको दिया जाता है कि देह यदि हार्डवेयर है तो सूक्ष्म शरीर क्या है? वो सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया गया, हार्डवेयर में वही देखने को मिलेगा। लेकिन उस सॉफ्टवेयर, उस हार्डवेयर का संचालन कौन कर रहा है? विचार करके तो देखो, उसका संचालन वो कर रहा है जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, मैं उसका संचालन कर रहा हूं। तो मेरे बारे में संत रविदास ने लिखा है कि बुद्धि, मन, इंद्रियां और मैं भाव, ये सारा का सारा जो है ये एक यंत्र बना हुआ है और ईश्वर शक्ति इसका संचालन करेगी। इसीलिए मेरा क्या काम है संसार में? मेरा संसार में एक ही काम बचा कि निश्चिंत होकर, और ये सूत्र याद रखकर कि जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माई, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई, मैं निश्चिंत होकर इस निश्चय के साथ, इस प्रभु विश्वास के साथ उसका सिमरन करूं। तो बताइए जरा विचार करके कि सिमरन होगा या नहीं होगा इस निश्चय के साथ। तो महाजी जब ये संत रविदास में लिख रहे हैं कि विवेक के साथ सही अभ्यास होता है। ये बात ठीक है या नहीं? मेरे अंदर विवेक नहीं है। लाख सत्संग सुनने के बाद भी मैंने इस तरह कभी विचार करने की जरूरत नहीं समझी। इस गहराई से संत रविदास का कोई वचन पढ़कर उस पर चिंतन करने की, उस पर मनन करने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए मेरी आज ये दुर्दशा है कि 10 साल सेवन करते हुए हो गया, लेकिन मैं वही पुरानी शिकायत दोहराता रहता हूँ। क्या करूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ, नियम का पालन करता हूँ, लेकिन संसार ही आ जाता। मेरे अंदर कर्तापन इतना दृढ़ है, संसार याद आएगा मैं। तो ये विवेक तेरे अंदर हुआ तो तेरे अंदर फिर वैराग्य स्वाभाविक रूप में आएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं ये जिंदगी की बर्बादी के अलावा? जिसको मैं कर्म कह रहा हूं, संसारी कर्म, ये तो जिंदगी की बर्बादी है। मेरी देह का संचालन वो कर रहा है क्या? मेरे बच्चों की देह का संचालन वो नहीं कर रहा है, वो मैं कर रहा हूं। अपने बारे में होश आएगा तो उनके बारे में भी होश आएगा, पूरी प्रकृति के बारे में भी होश आ जाएगा। वो साधारण शक्ति नहीं है। इसलिए वो कहते हैं करूं तो क्या करूं, जो बंधन मैंने बनाया है, गहरा किया है, अब मैंने उस बंधन को गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार धीरे धीरे हल्का करना है। विचार करने की बात यह है, जब तेरा ये जो यंत्र है ये दुखदाई है तेरे लिए, दुखदाई तो है ना, बचपन से सोचते 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 क्या दिन आ गया हमारा, और आपको कुछ साल निकल जाएंगे फिर आपको खुद ही मौत याद आने लगेगी। अभी तो फिर भी रहता होगा, अभी तो 10 साल और जी लूंगा, अभी तो स्वस्थ हूँ और कुछ कर लूँ, फिर उसके बाद तो आपको स्वाभाविक रूप में घर वाले कहेंगे कुछ ज़्यादा बात करोगे तो, अरे पापा कुछ मौत भी याद है नहीं, वही याद दिला देते हैं आपको, वही कहते हैं अब बैठो एक कोने में, भगवान का भजन करो, क्यों घर के कामों में बाधा डाल रहे हो, क्यों अपनी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही कहेंगे आप। लेकिन मेरा अहंकार बुढ़ापे में इतना प्रबल हो जाता है कि मैं कहता हूँ कि मैंने तो इतना बनाया, तुम उड़ा रहे हो उसको, सर्वनाश कर रहे हो। मेरी ये दुर्दशा होती है, मेरे अपने ही मुझको अपने जीवन में बाधा समझते। इसीलिए वक्त रहते हुए इस चीज को समझें, जो चीज जैसी है, जो भी सत्पुरुष है, जिसको हम ऋषि कह लें, जिसको हम सदगुरु कह लें, जो भी सत्पुरुष है, जो चीज जैसी है वो वैसे ही लिखता है और वैसे ही बताता है और वैसे ही वो अनुभव करता है जीवन। इसीलिए वैदिक काल से ये प्रकृति के सिद्धांत, मनुष्य के सिद्धांत, जो कुछ भी शारीरिक रचना के हैं, आज तक बदले नहीं है। विज्ञान कितना बदल गया, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई, तो ऐसा लगता है संसार कुछ का कुछ हो गया। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से देखें संसार जैसा था 1 लाख साल पहले आज भी वैसा ही है और 1 लाख साल बाद भी वैसा ही रहेगा। मनुष्य भी वैसा ही रहेगा और प्रकृति भी वैसी रहेगी, इसके सिद्धांत भी वैसे ही रहेंगे, ना इनका पतन होगा ना इनका विकास होगा। ये इटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस सत्य के प्रति मैं गाफिल हूं, गफलत में, मैं इसको इस तरह से सोचता ही नहीं। इसलिए ना मेरे अंदर वैराग्य है, कितना गहरा राग है, वो राग अपने शरीर से शुरू हो रहा है, शरीर से, क्योंकि मैं करके देख रहा हूं ना इसको, और जिससे संबंध है उसको मेरा करके देख रहा हूं। जो मेरा होता है उसमें मैं अधिकार करता हूं, कमांड करता हूं, मेरा है तो मेरा कमांड करना चाहिए। तो ये मैं और मेरा, इसी को ममता कहते हैं। तो ये मैं मेरा का संचालन जीवन शक्ति कर रहे हैं, क्योंकि मैं मूर्ख इसका संचालक अपने आप को समझ रहा हूं। इसकी सजा क्या मिल रही है फिर मुझे? इसकी सजा भी तो मिल रही है आपको, गलती करने की सजा मिलती है ना। तो महाराज जी से एक प्रेमी पूछता है, महाराज जी जीव करता नहीं, मैं करता नहीं, जब मैं करता हूं नहीं तो कर्मों का फल मुझको क्यों भोगना पड़ता है, मैं करता ही नहीं हूं तो कर्मों का फल मुझको क्यों भोगना पड़ता है, ईश्वर करता है ईश्वर भोग। अब गुरु क्या उत्तर दे रहा है, कहता प्रेमी जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है, देखो वर्ड्स देखो मार दिए, जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है तब तक भोक्ता भी तू ही है। यदि खाने का या खाने के स्वाद का सुख मैं यदि छोड़ दूं अर्थात उसके लिए लालायित ना हो, तो जब मन के विरुद्ध कोई चीज मुझको थाली में परोसी जाएगी तो क्या वो मुझे दुखी करेगी, वो तभी तक दुखी करेगी जब आप किसी विशेष चीज को खाने के लिए लालायित होते हो। तो जब आप खाने का सुख भोग रहे हो तो आपके मन की चीज नहीं मिलेगी तो उसका दुख भी भोग, तो ये दुख आपने तैयार किया है, इसके कारणकर्ता आप हो या ईश्वर, विचार करके तो देखो। तो यही मैं कर रहा हूं, वही महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है तब तक भोक्ता भी तू ही। इसीलिए मनुष्य जन्म का एक ही कर्तव्य है, एक ही उद्देश्य है, इसने ईश्वर भक्ति करनी है, ईश्वर को जानना है। जो तेरी देह का तेरे संसार का संचालन कर रही है जो शक्ति, ऐसी महान शक्ति को तूने जानना है और तू उसको जान सकता है क्योंकि वो तेरी देह के अंदर स्थित है, मौजूद है। और तेरा सूक्ष्म शरीर जिस मन है जिसमें सब चीज समाहित है वो भी इस देह के अंदर मौजूद है, और तू जिसके कारण सफर कर रहा है तू भी इस देह के अंदर मौजूद है। तो मन तेरे लिए मुसीबत है, ईश्वर तेरे लिए वरदान है, तो तू ईश्वर के लिए क्यों नहीं जीता, क्यों मन के लिए जीता, बस इतनी सी बात समझ। यदि ये बात तेरी समझ में आ जाए जो समता विलास पढ़ के समझ में आनी चाहिए लेकिन पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, इसका इस तरह से मनन करने से समझ में आएगी। बात ये सारी जो मैं कह रहा हूँ समता विलास की ही है लेकिन हम इस तरह से मनन नहीं करते, इसलिए कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, वर्ड्स पढ़ लेते हैं उसमें। यदि समता विलास का अध्ययन मैंने मनन करके ठीक प्रकार से उसका स्वाध्याय किया तो मेरे अंदर विवेक वैराग्य आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। संसार में जीने का तरीका मेरा बदल जाएगा, मेरे क्रियाकलाप बदल जाएंगे, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाएगा, फिर मुझे प्रकृति में और देह में ईश्वर याद आएगा। अरे सबको करता हुआ करता नजर आता है, बालक होता है ना, घर में जो होता है माँ ने किया है पापा ने किया है, माँ ने मम्मी ने किया है पापा ने किया है, बच्चे कहते नहीं कहते, जो करता है वो नजर आता है, उसका गुणगान किया जाता है। करता तो ईश्वर है, सारी प्रकृति का संचालक तो वो है, मेरी देह का संचालक वो है, मैं इस देह को जिंदा रख सकता हूं, मैं दिल को चला सकता हूं, विचार करके देखो जरा। तो जो सब कुछ कर रहा है उसको मैं भूले बैठा हुआ हूं, और मैं जो ऐबी आदमी हूं जो हरकतें कर रहा है उसका इतना अहंकार है, मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए जब प्रभु की करनी याद करोगे आप तो उसका जब सिमरन करोगे तो प्रेम भी सिमरन होगा। जैसे छोटा बच्चा माँ उसकी बिछड़ जाए उसको पता है दूध माँ देती है मुझे, खाना माँ देती है मुझे, चोट लग जाती है तो ठीक माँ करती है मेरी, तो माँ को कितने प्रेम से याद करता है, भूलता है, तुम कह दो माँ को भूल जाओ, भूल जाओ, कितने प्रेम से याद करता है, क्योंकि माँ है उसको, सब कुछ करती है उसके लिए। और गुरु लिख कर दे रहा है को देह के अंदर जो जीवन शक्ति है, जो प्रभु शक्ति है, वो तेरी देह के लिए सब कुछ तो कर रही है, लेकिन तुझे होश ही नहीं है वो कर रही है, इसको मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूं, तो इसलिए प्रेम से याद ही नहीं होगी। एक बालक तो समझ रहा है वो मां से प्रेम कर रहा है, राम को जो परम समझ रहे हैं, मेरा तो सब कुछ माँ करती है, वो कह रहे साफ साफ कह रहे शिष्यों से कह रहे हैं मेरा तो सब कुछ माँ करती है, और सबका सब कुछ माँ ही करती है, सबके शरीर तो कठपुतली की तरह से है और कठपुतली की डोर माँ के हाथ में, प्रभु के हाथ में, और वो अंदर चला रहा है कठपुतली। तो राम के परमहंस को होश है, हम मदहोश है, देह के नशे में। तो अब बताइए ऐसे अज्ञानी जीव को कौन बचाएगा? ईश्वर ने तो रचना कर दी ना, आपको ग्रंथ लिखकर दे दिया और महाजी के रूप में जीवन जीकर दिखा दिया, इस ज्ञान के अनुसार जीवन जीकर दिखा दिया, प्रैक्टिकल भी कर दिया और थ्योरी भी दे दी तुझको। अब तू इतना नालायक हो जाए कि ना उसके गुरु के जीवन को देख, ना उनके ज्ञान को सीख, तो डूबे डूबना कौन बचाएगा तुझे, बता, कोई बचा सकता है? तो इसीलिए जब तक हमारे अंदर इस तरह की समझ नहीं होती जो कि होनी चाहिए, तब तक आपके अंदर विवेक और वैराग्य मेंटेन नहीं रहेगा, और जब तक ये मेंटेन नहीं रहेगा आपका मन सिमरन में लगेगा नहीं, सिमरन करोगे तो जरूर लेकिन उसमें प्रेम नहीं आएगा। इसीलिए यदि सिमरन में प्रेम पैदा करना है और संसार के प्रेशर को एलिमिनेट करना है या मिनिमम करना है, तो इस तरह से हमको चिंतन करना ही पड़ेगा, फिर आप खुद देखेंगे ये शिकायत आप नहीं करेंगे। जब भी सिमरन करने बैठोगे प्रेम से प्रभु याद कर। ओम।